Nabi Maimas, which is Sabhi Seva ke nau par Tapasya Mas ke roop mein manane ka yahan se direction gaya hai. Mai, June, July. अब उसके पहले आप सब बाबा के बच्चे इन मधुबन घर में तपस्या करने के लिए आए हैं. ये भी बहुत बड़ा भाग्य है जिस स्थान पर आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने, मातेश्वरी जगदम्बा माँ ने और हमारी सभी दादियों ने तपस्या की है. उनकी तपस्या के वाइब्रेशन कण कण में समाये हुए हैं. जिधर भी जाओ कहते हैं तेरे हर कण से बाबा याद आती है. बाबा की याद आती है ना, चाहे कुटिया चले जाओ, चाहे कमरे में जाओ, चाहे हिस्ट्री हाल में जाओ, चाहे शांति स्तंभ पर. तो हम सब बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि में आए हैं और लक्ष्य तो यही है कि हमारी इतनी पावरफुल शक्तिशाली स्थिति बने जो किसी भी परिस्थिति में डगमग न हो. क्योंकि बाबा तो कितने साल पहले कह के गए, आज की मुरली क्या सुन रहे थे, बच्चे विघ्न तो आएंगे. विघ्नों से डरना घबराना नहीं, लेकिन विघ्नों का काम है आना और आपका काम है पास हो जाना, पास कर लेना. तो इसलिए कलयुग के अंतिम समय में हर क्षेत्र में अति हो रही है, अति होनी है. लेकिन उस अति में मुझ आत्मा की स्थिति डगमग न हो, अचल अडोल एक रस स्थिति रहे, उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए. नहीं अचानक कोई पेपर आता है, कई प्रश्न उठ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ ही ऐसा हो गया. कभी बाबा को भी दोष देने लगते, कभी अपने भाग्य को दोष देने लगते. लेकिन बाबा ने हम सब बच्चों को नॉलेजफुल बनाया कि बच्चे सृष्टि नाटक के अंदर तुम पार्ट बजाते बजाते जब देह अभिमान के कारण कर्मेंद्रियों से पाप होने लगे, विकर्म करने लगे, तो उसके कई हिसाब किताब बनते गए. चुक तो भी किए भक्ति के अंदर कुछ नियम मर्यादाओं का पालन करके, लेकिन धीरे धीरे वो बोझ छोटा थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते अंत समय में अब सबके सामने जब वापस घर चलने का समय है तो हिसाब किताब सबके आगे आ रहे हैं. चाहे शारीरिक रूप से आते हैं, चाहे मानसिक रूप से आते हैं, चाहे आर्थिक, चाहे पारिवारिक. और इस कलयुग के अंदर वर्तमान समय तो सबसे बड़ा पेपर प्रकृति ले रही है, प्राकृतिक पेपर. कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है, कहीं अचानक इतनी बाढ़ें पड़ आ जाती हैं, कहीं ज्वालामुखी फटते हैं, कहीं कुछ होता है, प्राकृतिक आपदाएं. और ये सब ड्रामा की नोंद बाबा ने पहले से ही बताई है. और अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए हमें आसन भी दिए हैं, इस पर रहना बच्चे. इस आसन पर रहोगे तो डगमग नहीं होगे. तो मैं आपको आज चार आसन देता हूं, बाबा ने बताए हैं. पहला आसन है आत्मा का ये भ्रकुटी तख्त, अकाल तख्त. जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, देह अभिमान से हम न्यारे होते जाएंगे. नेचुरल नेचर देही अभिमानी की बनती जाएगी, उतना देह के तरफ से आए हुए पेपर को हम बहुत सहज पार कर सकेंगे. इसलिए बाबा ने हमें रोज यही आसन दिया, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो. बार बार देह से मैं अलग एक विदेही निराकारी स्वरूप में आत्मा हूं, इसका अनुभव करो। यह काल तख्त तुम आत्माओं का पहला तख्त है, आंख खुले इस तख्त पर बैठ जाओ। इसको दूसरे सोमान में हम कहेंगे, मैं आत्मा मस्तक मणि हूं, मस्तक के बीच में मणि की तरह मैं चमक रही हूं। दूसरा तख्त बाबा ने दिया है अपने दिल का तख्त, बच्चे मेरे दिल के तख्त पर विराजमान रहो, कैसी भी बातें आएंगी तुम्हारे को डगमग नहीं करेंगी, क्योंकि बाबा का दिल तख्त बहुत सुरक्षित तख्त है और बहुत विशाल है, कितने भी बच्चे इस तख्त पर रह सकते हैं। तो बाबा ने हम सभी अपने सपूत बच्चों जो आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, उनके लिए दिल तख्त का आसन दिया है। रहते हो दिल तख्त पर? कुमारिया रहते हैं बाबा के दिल तख्त पर? रहते हो? केवल दिल में अगर बाबा को बसाया है, कोई दूसरा दिल में आएगा तो हम बाबा के दिल पर नहीं रह सकेंगे, शर्त है। इसलिए सदा बाबा के दिल तख्त नसीन रहने के लिए दिलवाला के बन करके रहना, केवल दिल में एक दिलवाला ही बसे, कोई भी देहधारी का प्रभाव न पड़े। तो जितना हम दिल तख्त नसीन रहते हैं, बाबा हमारे लिए सुरक्षा का कवच बना देता है। बच्चे मेरी सुरक्षा की गोदी में है, कुछ भी इनको नहीं हो सकता। और तीसरा तख्त है साक्षी दृष्टा स्थिति का तख्त, वो ज्ञान से आता है। जितना हम नॉलेजफुल बनते हैं, आज बाबा ने कहा बच्चे ये जब स्मृति रहती कि कल्प कल्प इस बात को मैंने पार किया है, तो आत्मा बहुत निश्चिंत रहती है, हल्की रहती है। तो जो साक्षीपन का तख्त है, वर्तमान समय अपने और अपने करीबियों के नजदीक वालों के पार्ट को बहुत बहुत साक्षी होकर के देखना, नहीं तो कई प्रश्न उठ जाएंगे, जरा भी कहीं अटैचमेंट होगी, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, इसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं, ड्रामा के अंदर कोई भी बात किसी के सामने भी आ रही है, तो बाबा ने अपने बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया है। बच्चे कुछ न कुछ किए हुए कर्मों का परिणाम ही है, उसको हम न समझने के कारण बहुत छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बाबा के अनन्य बच्चे जो ज्ञानी योगी तू आत्माएं हैं, बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, तन मन धन सब सफल करते हैं, अचानक ग्रहचारी आती है, बाबा का हाथ छोड़ देती है, मुरली सुनना बंद कर देते हैं, कई तो बड़ी जल्दी बहने बहुत हलचल में आ जाती, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, इसको किसने बहका दिया, किसने कह दिया। स्टूडेंट्स के अंदर भी हलचल हो जाती है, ऐसा क्या हो गया। बाबा कहता है बच्चे क्या उसके पार्ट को साक्षी होकर के देख सकते हो? ऐसे सीन को भी बहुत अलग से देखना कि इसका क्या पार्ट है, क्या इसका हिसाब किताब है। जो अचानक कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं, 2 बजे योग करते हैं, अमृत वेले उठ के मुरली क्लास करते हैं, दूसरों को कराते हैं, बहुत अच्छे उत्साहार्थी होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा दिखाई दिया, ऐसा लगता है क्या हो गया इनको, अचानक कैसी ग्रहचारी आई जो बाबा से परिवार से एकदम मुख मोड़ लिया, पुरानी दुनिया में चला गया। कई क्वेश्चन होते हैं, अचल अडोल स्थिति रहे, उसमें क्वेश्चन न उठे, इधर उधर वर्णन न करें, ठीक है इसका ये पार्ट, कुछ तो इसके पीछे कारण है। ऐसे समय में साक्षी दृष्टा स्थिति का तख्त चाहिए। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है और कुछ न कुछ उसके पीछे रहस्य कल्याण के भरे हुए हैं, कुछ कल्याण है। कई ऐसे सीन आते हैं लगता है इसमें क्या कल्याण है, ये तो लगता तो नहीं इसमें कोई कल्याण है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसमें भी कल्याण है, क्योंकि वो दृश्य जो आपके आगे नेगेटिव रूप में आ रहा है उससे आप कुछ तो अनुभवी बन रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं, वो सिखा करके जा रहा है जिससे आप आगे धोखे से बच जाएंगे, इसलिए उसमें भी कल्याण है। कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, न मन न चित, अचानक यज्ञ की बदनामी हो जाती है, इतनी सेवाएं होती हैं, एक तरफ इतना वृद्धि इतना विस्तार होता है, नामाचार होता है, और एक छोटी सी भूल कोई ने कर ली, पूरे यज्ञ के ऊपर उसका नाम आ जाता है, चारों तरफ से हलचल हो जाती है, यही होता है, ये सा होता है, ऐसा होता है। जरूर उसमें भी कुछ सिखा रहा है बाबा, ड्रामा का ज्ञान पक्का करो, एक्यूरेट है सब कुछ, कुछ सिखा के गया है। तो इस साक्षीपन का तख्त हमारी स्थिति को अचल अढ़ोल बनाता है। और पांचवा चौथा जो तख्त है वो है अपने बहुत ऊंचे सम्मान का तख्त। अभिमान नहीं है उसमें, लेकिन मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, अगर ये स्मृतियां रहती हैं तो एक सम्मान का तख्त जिसके पास रहता है, आंख खुलते ही सवेरे सवेरे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक विद्यापति हूं। भगवान ने हमें झूठे टाइटल थोड़ी दिए, सच्चे टाइटल दिए हैं, और वो टाइटल्स को स्मृति में लाना सम्मान के रीति से, इससे अभिमान खत्म होगा, देहमान समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो चार तख्त हैं उन चारों तख्तों को मजबूती से पकड़ करके उसी पर विराजमान रहेंगे तब हमारी अचल अडोल एक रस स्थिति रह सकती है। वैसे भी कोई तूफान आता है, भूकंप आते हैं, जिनके फाउंडेशन मजबूत नहीं होते वो फटाफट गिर जाते हैं, कहते इसका फाउंडेशन तो जैसे रेत पर है। कोई रेत पर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो क्या होगा, ठहरेगी, गिर जाएगी। हम सब बाबा के बच्चे, जब बाबा के बने अपने फाउंडेशन को जरूर चेक करें, हमारा फाउंडेशन क्या है। बहनों का स्नेह, बहनों ने बहुत प्यार से भोजन कराया, टोली खिलाई, स्नेह दिया। कई लोग ऐसे आते हैं, हम लोग आए तो ऐसे ही है ना, स्नेह से आ गए बाबा के घर में, लेकिन वो स्नेह कई बार अगर न मिला, कोई ने नहीं पूछा, तो फटाफट अपसेट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है ठीक है, स्नेह एक आधार है, स्नेह एक पहला, बच्चे को जैसे प्यार दिया जाता है, माँ बाप देते हैं, उसके बाद जरूरत है उसको शक्तिशाली बनाने की। खुद को खुद शक्तिशाली बनाओ, ज्ञान और योग के फाउंडेशन को पहले कूट कूट के पक्का करो। कई ऐसे कुमार हैं हमारे सेंटर्स पर आते हैं जो दीदी सेवा दे, इतना प्यार से भावना से, अभी अभी देखो सब्जी ले आएंगे, अभी कोई काम करके आ जाएंगे, भाग दौड़ करेंगे, सब सेवाएं करते हैं, लेकिन अपनी उन्नति के लिए मुरली प्यार से सुने, योग करें, उसके लिए उनके पास समय नहीं है। और अगर मान लो किसी के कहने से, किसी के भय से बैठ भी जाते हैं, तो बुद्धि इधर उधर भागती है, भटकती है, बैठते हैं थोड़ी देर, बैठते हैं फिर निद्रा देवी में चले जाते हैं। लोग कहते शायद ये थका हुआ है, ले सो गए। थका हुआ नहीं है, वो अपने को शांत करना चाहता है, तो शांत करते करते उसको नींद आ जाती है। जो फाउंडेशन होना चाहिए उस फाउंडेशन को उसने मजबूत नहीं किया, इसलिए चलते चलते अगर उसके सामने कोई भी पेपर आएगा, कोई ने कोई मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, कोई बात कुछ आपस में थोड़ी बहुत हो गई, बाबा ने तीन चार दिन पहले वरदान में कहा, बहुत सूक्ष्म बंधन दो बताए थे। एक बताया कि श्रीमत में अपनी बुद्धि को मिक्स करके बुद्धि की कमाल समझ रहे हैं, है श्रीमत, लेकिन समझते हैं मेरी मत है, मेरे विचार है, मैंने ये किया है, कर रहा श्रीमत में, लेकिन उस श्रीमत में अपनी बुद्धि की मत को मिक्स करके और अपने उस नशे में रहता कि मैंने ये कर लिया, बंधन। दूसरा बंधन बड़ा सूक्ष्म बताया कि चलते चलते अगर कोई ने उसको करेक्शन कर दी, कोई ने उसकी कमी कमजोरी पर ध्यान खिंचवा दिया, तो फट से उसका मूड खराब, खुशी गायब, स्थिति डगमग, निंदा स्तुति जय पराजय मान हानि में जो योगी की समान स्थिति है, उस समान स्थिति की बजाय महिमा हुई तो खुश, कोई ने कुछ बोल दिया तो फुस, क्या हो गया? अरे भाई हो गई, संगठन है, परिवार है, बातें हैं, होती हैं, किसके सामने नहीं होती, छोटी मोटी बातें किसके सामने नहीं आती, लेकिन कोई इतने सेंसिटिव होते हैं जो छोटी सी बात हो गई, मान लो सामने वाले ने मुस्कुरा के देखा नहीं, ओम शांति नहीं किया, बस उसके संकल्प चलना शुरू हो गए, स्थिति पता नहीं क्या है। बाबा कई बार कहते ना छुई मुई होता ना, जैसे सामने भी ऐसे टच कर दो, सामने टच भी नहीं करो ऐसे चले जाओ तो भी मुरझा जाता है, क्या ऐसी स्थिति है हमारी? अगर हमने अपने फाउंडेशन को मजबूत नहीं बनाया है तो छोटी छोटी बातें परिवार के बीच में, संगठन के बीच में, क्योंकि संस्कार तो बाबा कहता है एक हो ही नहीं सकते, संस्कार वैरायटी हैं, संस्कार वैरायटी रहेंगे। हमारी दीदी दादी जिनको बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ सौंपा, हम सबके अंदर से आता था ये आत्माएं दो हैं, शरीर एक है, और इतना उन्होंने अपने संस्कारों को मिलाया, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं, दीदी ने कहा दादी ने माना, दादी ने कहा दीदी ने माना, कोई भी बात हो तुरंत कभी कट नहीं किया। हाँ आपस में बैठ करके राय करके कोई बात नहीं अच्छी है तो ठीक किया, लेकिन ऐसे नहीं दीदी की विचार अलग है, दादी के विचार अलग है। यज्ञ का जो विस्तार हुआ, जो पूरे संगठन को उन्होंने एकता के सूत्र में पिरो दिया, इतनी सब दादियां जो उनसे भी बड़ी बड़ी थी, उन सब को भी अपने साथ मिला करके चलाया, उसके पीछे था दादियों की अंदर नम्रता का झुकने का संस्कार, झुक करके ठीक है सॉरी कर लिया, और सॉरी करके कोई भी बात आई ठीक है आगे के लिए ध्यान देंगे। संस्कार भिन्न है, विचार भी भिन्न है, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि संस्कारों की भिन्नता के कारण हमारे कार्य व्यवहार में टकराव हो गया। कोई भी कार्य हो, कई भी सेवाएं हो, जब एक बात बहुत अंडरलाइन कराती थी, हम लोग कई बार बैठते थे, कोई भी प्लान करना है, कोई भी मकान तक बनाना है, तो 10-12 लोगों को बुलाना जो मुख्य हैं, उनसे राय लेना, कोई भी सेवा की प्लानिंग करनी है पूछना, और अगर उसमें से दो के विचार नहीं मिल रहे हैं तो दादी कहती थी वेट एंड सी, वेट एंड सी, तैयार हो, अभी ये जो दो विचार नहीं मिल रहे हैं ये बहुत बड़ा विघ्न है, इस विघ्न को खत्म करने के लिए हमें विचारों का मिलन करना होगा, सिद्ध नहीं करना कि ये राइट है यही करना है, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज कराना है कि नहीं ये करने से फायदा है। तो दादियों ने सबको जब एक किया, सबके विचारों को मिलाया, तब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, 1 लाख का प्रोजेक्ट, 1 लाख भाई बहने, 2 लाख भाई बहने, इतने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करवाए। जब पहला संकल्प आया तो दादी ने मेरे को बुलाया सवेरे सवेरे, बैठी कहती है राजू आज मेरे को बाबा कहता है 1-1 लाख का प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैं हंसने लगा, मैंने दादी बाबा आपको टच करता अच्छा है, लेकिन 1 लाख हमारे प्रोग्राम में कहाँ आएंगे? पता नहीं बार बार संकल्प आता है 1 लाख का प्रोग्राम, 1 लाख की सभा, तब मैं तो ज्यादा कट्टे करता ना, दादी ठीक है आपको विचार आया। फिर भाइयों भाई बहनों को बुला लिया, संगठन को बुलाया, उनमें सब ने उस बात को कट किया, दादी ये तो कैसे संभव है, कोई एक्टर हो, कोई बड़ा नामी ग्रामी व्यक्ति प्रोग्राम में आए, तो लोग 1 लाख 2 लाख इकट्ठे हो सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में कौन है। उसमें एक दीदी हमारी सलाह दीदी थी ना अहमदाबाद की, वो दादी के प्रति बहुत समर्पित भाव था। दादी आप कहती हो मैं पहले अहमदाबाद में करके देखती हूं, बस दादी का कहना था और उसने हाँ किया। और जब प्रोग्राम किया है अहमदाबाद में 2 लाख से वैदिक भाई बने आ गए। और यही तीनों दादियां थी, जानकी दादी, गुलजार दादी और बड़ी दादी, उनको एक बड़े ऊंचे रथ पर सजाया बिठाया और उनको पूरे परिक्रमा कराई। मैं भी उस ग्राउंड में था अहमदाबाद का पहला मेला जब हुआ मेगा प्रोग्राम, और बहुत ऊंची स्टेज पर तीनों को बिठा करके वहां से भाषण कराया। अब दादी उस प्रोग्राम को देख के इतना खुश हुई, कहती बाबा की टचिंग गलत हो ही नहीं सकती। और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत के अंदर 1 लाख के प्रोग्राम कराए, नहीं 1 लाख हुए 50,000 तो हुए। जो शुभ संकल्प उनको उठे, सबकी राय ली, और राय में अगर कोई ने सहयोग दे दिया तो तुरंत कर लिया। समय अनुसार अभी वर्तमान समय हम सब समझते हैं कि यज्ञ जो है एक के कंट्रोल में है। अभी इस पर थोड़ा विचार करना, जो बीच के कंट्रोल थे सब खत्म हो गए। अब ऊपर से बाबा कैसे यज्ञ को चला रहा है, गुप्त रीति से अपना कार्य करा रहा है, जो उसके आज्ञाकारी सपूत बच्चे उनको निमित्त बनाएगा, इनको ही कहे मैं कर रहा हूं मैंने किया, तो हो सकता है वो अभिमान उसके कार्य में विघ्न रूप बन जाए। जहां वो अभिमान आएगा वहां विघ्न आएगा, कराने वाला करा रहा है। जितना हम समर्पित भाव से इस समय के परिस्थितियों को देखते हुए यज्ञ को हम देखें, विस्तार को देखें, कोई बड़ा नहीं है, कोई कहने वाला किसी को नहीं है, ये संकल्प नायब कौन है, वो तो छोड़ के नहीं गया है, वो जाएगा भी नहीं। यज्ञ किसका है, यज्ञ पिता कौन, यज्ञ माता कौन, और यज्ञ का रक्षक स्थापक कौन, ये हमारा त्रिमूर्ति बाबा का पार्ट। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, मम्मा माना सब उनके बीच में दादियों का संगठन, ये शक्तियां इस यज्ञ को संपन्नता की ओर ले जाएंगी, संपन्न करेंगी, प्रत्यक्षता होगी। और एक बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, न कि मुझे अपनी प्रत्यक्षता करनी। एक नामी, एक का नाम वाला हो, कोई भी कार्य करो, कोई भी सेवा करो, जहां पर कोई ने पर्सनल अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, अपना नाम मान शान इसके पीछे सेवाएं की, वहां ही विघ्न है, वही हलचल है, और उसके कारण ही कई प्रकार की बातें सामने आती है। और जहां संगठन के बीच में ये आ जाएगा भावना, जब कि हम सब जितने बाबा के बच्चे हैं, हमारा सबका लक्ष्य है हम सबको एक को प्रत्यक्ष करना है। एक बाबा ने हमें सबको प्रत्यक्ष किया है, लेकिन अब हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी ऐसी हो जो बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, बाबा ने हमें ऐसा बनाया है। तो वर्तमान समय के अनुसार हम सबको अपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत करना, एक ज्ञान योग से मजबूत करो, दूसरा निश्चय का फाउंडेशन बहुत पक्का चाहिए। पिछली मुरली चल चुकी है निश्चय पर, निश्चय बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। क्या निश्चय होगा ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा में, कितने पेपर्स को उन्होंने इतनी सरल रीति से पार कर लिए, चाहे कराची के पेपर सुनो, हैदराबाद के सुनो, सारा पूरा ही समाज विरोध कर रहा है, ब्रिटिश राज्य है, सारा सिंधी समाज एकदम विरोधी है, उसमें भी बाबा चल अडोल एक रस है। लेकिन उन्होंने एक विधि अपनाई और वो शिव बाबा ने विधि बताई, बहनों को आगे कर दो। जहां पर बहनें आगे आई उन्होंने सब बातों को फेस कर लिया, कई बातों को बाबा ने इतना सरल रीति से उस परीक्षा को, जब विरोधाभास था पूरा, ब्रह्मा बाबा गुप्त हो गए, मैं कुछ नहीं करता, ये बहनों की संस्था ओम मंडली, सेफ कर लिया अपने को। और कई पेपर आए, बाबा बैठा है, बाबा इन बच्चों का रक्षक है। यहाँ आते ही आर्थिक पेपर, धन नहीं है, साधन नहीं है, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और मकान अपना नहीं है, इधर से इधर ट्रांसफर, इधर से इधर ट्रांसफर। ब्रजकोटी एक दो साल में तो क्या कंगाल बना गई, सारे के सारा जो लाए थे ऊपर वहां से सब भर करके वो सब बिक गया, कुछ नहीं बचा। वो ट्रांसफर किया दूसरी जगह है, थोड़े दिन के बाद इसको खाली करो, इसको खाली करो, कोटा हाउस, ये धौलपुरा हाउस आबो में, ये मकान जब मिला तो इसको लिया, इसके पीछे धौलपुर राजा यहाँ रहता था। कहने का मेरा भाव है कितनी परीक्षाएं आई, कितना यज्ञ को हिलाने के लिए लोगों ने कोशिश की, लेकिन न बाबा हिले न यज्ञ को हिलने दिया। अचल अडोल एक रस, क्योंकि भगवान का कार्य है, उसका अपना कार्य संपन्न होना ही है, कितनी भी विघ्न बाधाएं आए। एक दृश्य सुनाता हूं बाबा का, अव्यक्त बाबा का। जब ओम शांति भवन बन के तैयार हुआ तो उसके बाद इच्छा तो होती ना लोगों को, क्या संस्था थी, एक छोटा सा अपना मकान नहीं था, इतने बड़े बड़े सारा आबू बुक कर लिया, 3-4 हजार लोग आए पहले उद्घाटन में ही, तो पूरा आबू एक भी चारपाई बाहर वाले के लिए नहीं, सब ब्रह्म कुमारी का। तो लोग थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर और जल गए, नुकसान इच्छा। और उसके बाद इतने बिघ्न, हर बात में रुकावट। कोई सरकारी ऑफिसर आना चाहे आ नहीं सकता, उसके लिए नोटिस कि नहीं ये गलत संस्था, ऐसी संस्था, ऐसी संस्था, बहुत सारी बातें। दादी ने बाबा को बुला लिया एक दिन, दादी को कोई भी ऐसी बात होती थी बाबा ही बताए क्या करना अभी आगे। तो ओम शांति भवन में बन गया था तो उसमें बाबा को बुला लिया, और केवल हम मधुबन वालों को बिठाया, पार्टियों को नहीं बिठाया। तो मैं तो जब भी बाबा आते थे तो चाहे हाथ से लिखूं चाहे टाइप करूं, तो मैं लिख रहा था और मुरली चल रही थी, शुरू किया बाबा ने, और अचानक ऐसे दृष्टि दी और कहा सारा क्या, लिखना बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, सब रुकवा दिया सबका। फिर अपनी दादियों को, बड़े भाई बहनों को बुलाया, याद रहा, कुछ लोग गए स्टेज पर बाबा के सामने बिठा लिया, और फिर बाबा उनको दृष्टि देता, सब बैठा बेफिक्र वासा जैसा, पूछने लगा क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जब सब ने सुनाना शुरू किया, कोई न कोई, किसी ने कोई बात सुनाई, किसी ने कोई बात सुनाई, और बाबा ऐसा बैठा जैसे कोई बादशाह बैठा, बेफिक्र बादशाह से, नशे से, और एक ही शब्द में जवाब दिया, जो सवेरा आने वाला है कोई अंधेरा उस सवेरे को रोक सकता है, बहुत निश्चय से, इसलिए कोई बात के संकल्प नहीं चलाओ, सब ठीक हो जाएगा। और इतने निश्चित स्थिति, जैसे निश्चिंत होता ना कोई, सब ने दादी ने बाबा को देखा, तो बाबा बैठा हुआ है, कार्य किसका है, स्थापना भगवान की कार्य की, नई दुनिया बनाने की, और जब नई दुनिया को आना ही है तो ये छोटी छोटी बातें, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बाबा ने अपने को हिलाया नहीं, डगमग नहीं हुए, दादियों को भी हिलने नहीं दिया, एक रस अचल अडोल स्थिर, संपूर्ण निश्चय कि कार्य किसका है और किस लिए कार्य शुरू हुआ है। जब तक नई दुनिया की स्थापना संपन्न नहीं हुई तब तक कितने भी रोड़े आए, कितनी भी बाधाएं आई, बाबा का कारवां रुकने वाला नहीं है, है निश्चय है, टीचर्स को निश्चय, कभी भी हिलना नहीं, कोई भी बात आ जाए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बहुत छोटी छोटी बातों को आज सोशल मीडिया के कारण इधर उधर फैला करके अपने परिवार की स्थितियों को डगमग कर देते लोग, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे जो हो गया उसके पीछे राज होंगे, कुछ रहस्य होगा, चुप रहो, शांत रहो, शुभ भावना का दान दो, शुभ भावना करो, मनसा सेवा करो, मनसा सेवा करने की बजाय इधर उधर बातों को फैलाना, चिंतन करना, वर्णन करना, उसका बहुत बड़ा बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ रहा है। खुद हिलते हैं, दूसरों को भी हिला देते हैं। इसलिए ध्यान देना, बाबा ने हम सबको अचल, अडोल, एक रस, खुशनुमा स्थिति में रहने के लिए निश्चय के फाउंडेशन को पक्का किया। बच्चे स्वयं में निश्चय रखो, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। कितने भी पेपर आए, कैसे भी संस्कार आए, कुछ भी आए, मैं पार करके दिखाऊंगा, मैंने विजय पाई है, विजयी हो करके रहूंगा। कभी ये नहीं कहो क्या करूं, मेरा संस्कार बड़ा कड़ा है। किसके संस्कार कड़े नहीं थे? विधि अपनाओ, जो बाबा ने हमें पुरुषार्थ की विधियां बताई हैं उनको फॉलो करते चलो। तनाव वाला, टेंशन वाला पुरुषार्थ नहीं करना, नहीं तो सदा नहीं हो सकता। एक दो दिन करोगे फिर थक जाओगे। नेचुरल जो दिनचर्या बाबा ने बनाई है, अमृत वेले से रात तक की, कोई कुछ भी आपको सिखाए, बाबा ने क्या सिखाया है? बाबा ने कभी हठ क्रियाएं न की है न कराई है, न भोजन किसी का छुड़वाया है, न नींद छुड़वाई है। बैलेंस से सिखाया था। जो कुछ करो बैलेंस से करो, टू मच में नहीं जाओ। एकदम छोड़ दोगे तो भी परेशान होगे, बीमार होगे, और नहीं करोगे तो बीमार, और ज्यादा करोगे तो भी बीमार। इसलिए कोई के कहने के अनुसार ये डॉक्टर ऐसे कहते हो, फलाना ऐसा कहता, ये ऐसा कहता, आपको क्या सूट करता है? आपके प्रकृति के अनुसार क्या आपको चाहिए? आज मान लो कोई कहे, खेती में काम करने वाला, हमारे 12 घंटा 14 घंटा जो खेत में काम करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के कोई दवाई छिड़कता है, कोई फल तोड़ रहा है, कोई सब्जी तोड़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसको कहे तुम 12 बजे तक नाश्ता ही नहीं करो तो चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा। कोई ने कह दिया उनको, दो दिन मेरे पास आए, हमने कहा तुम किसी की नहीं सुनो, दादी ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम नाश्ता छोड़ करके काम करो, जाकर करो। तुम लोग तो इतना हार्ड वर्क करते हो, अगर 2 की जगह 3 खाओगे तो भी हजम हो जाएगा। जो नहीं करते उनके लिए सब है नियम, लेकिन कई बात हम लोग जिसने कहा हम लोग फॉलो करने लगते हैं। अभी थोड़े समय ठीक चलते हैं, उसके बाद इतना हलचल में आते हैं। अभी अभी मैं एक जगह गया, माता पिता ज्ञान में थे, बच्चे भी ज्ञान में आते थे, बच्चे ने एक क्लास सुन लिया कोई का, उसने खाना पीना छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद इतना सिकुड़ गया, इतना पतला दुबला, माँ बाप इतना चिंतित, क्या सुन लिया इसने, किसका क्लास सुन लिया, मेरे पास लेके आए, आप समझा दो भाई साहब, ये खाता ही नहीं है कुछ, योग करना है, ब्रह्मचर्य में रहना है। क्यों कर रहे हो ऐसा, किसने कहा तुमको? फलाने ने कहा। भाई फलाने ने कहा, तेरे को क्या चाहिए? माँ बाप दुखी हो गए, चिंता कर रहे हैं तेरी, न तुम पढ़ाई कर सकता है, तेरे को चक्कर आते हैं, तेरे को संभालने वाला चाहिए। ये हट नहीं करो, हट क्रिया बाबा ने नहीं सिखाई। जितनी हलचल होती है, कई बार हम लोगों की बातों को समझते, ये जो कह रहा है ये सत्य है, बड़ा भाई है, ये बड़ा डॉक्टर है, फलाने है। बाबा ने क्यों क्या कहा है? जो कुछ बाबा ने कहा है उसके विपरीत कोई भी बात अगर सुनाता है, सुनो जरूर भले, लेकिन उसको ही फॉलो करना ऐसा कंपल्सरी नहीं है। फॉलो फादर है, सी फादर, फॉलो फादर। अगर हमको अपनी अचल अडोल स्थिति बनानी है तो किसी भी देहधारी आत्मा, चाहे जितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, जो अच्छी बातें भले फॉलो, जो हमें सूट नहीं कर रहे हैं, जो श्रीमत नहीं कह रही है, मुझे उसको फॉलो करके अपनी स्थिति डगमग नहीं करनी है। इस पर अंडरलाइन करना। तो स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, और इस खेल में पूरे खेल को साक्षी होके देखना, ड्रामा में निश्चय। और यही परिवार हमारा परिवार है। जो भाई बहने मिले हैं, जो हम संगठन में हैं, जहां भी हैं, कहीं ना कहीं हमारे 84 जन्मों में उनके साथ पाठ रहे हैं, संबंध रहे हैं, तब हम इतने समीपंत समय में आए हैं। जो कुछ किया है उसका परिणाम भोगना पड़ता होता है, छोटी मोटी बातें। हम तो यहां नहीं रहेंगे, तो कई बार एक जगदीश भाई क्लास कराते थे, कोई डिस्टर्ब होते ना, मैं यहां नहीं, वहां वहां चले जाएंगे तो बहुत अच्छा, वहां जाएंगे तो बहुत अच्छा। तो भाई साहब कहते थे, कीड़ा आसमान से लटका झाड़ में पहाड़ में, न इधर का रहा न उधर का रहा। इसलिए हम सब ध्यान दें, जहां भी जाने का संकल्प आएगा वहां भी कुछ हिसाब किताब होगा, तभी तो आ रहा वो संकल्प। इसलिए जिस स्थान पर हो क्यों ना योग से, अपने अच्छे संकल्पों से, अपने अच्छे वाइब्रेशन से, पवित्र विचारों से उस नेगेटिविटी को खत्म करो। जो आती है बातें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों को बड़ा सोच सोच करके पहाड़ बना करके और फिर किनारा करते और जहां जाते हैं वहां पर भी दुखी रहते। इसलिए ये बात स्थान परिवर्तन से ठीक नहीं होगी। ये परिवार है हमारा और परिवार में हम एक दूसरे को समझें, कोई भी बातें आ रही हैं समझ करके उसको पार करें। ना बहुत अच्छी बाबा पॉइंट सुनाते हैं, माला का दाना जो है वो माला में तभी पिरोया जाता है जब समान है, दोनों दाने समान हैं। अगर एक का छेद छोटा एक का बड़ा है, एक मोटा एक पतला, तो भी माला में नहीं रहते, लेकिन समानता होते हुए भी वो कहीं एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है, अलग है, अटैच है। अगर हम कहीं अटैच हो गए तो भी माला से बाहर, परिवार से बाहर हो जाएंगे, और अगर हमने अपनी मन मत चला करके अपने आप को अलग कर लिया तो भी हम माला में नहीं आएंगे। इसलिए बाबा ने हम सबको परिवार की बहुत गहरी परिभाषा सिखाई है। ये परिवार हमारा अपना परिवार है, उसमें झुकना है, सहन करना है, सामना करना, समाना, जो गुण है जो शक्तियां बाबा ने दी है उन सबको यूज करना है और अपने को सेफ रखना है। तो पहला फाउंडेशन निश्चय का है, पहला ज्ञान योग का, फिर निश्चय का, लेकिन तीसरी बात है अनुभव की। कोई भी बात जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ बाबा कह रहे हैं, क्या मैंने उसे अनुभव में लाया है? सुन लिया, सुना दिया, सुनी सुनाई बातें तो कभी भी डगमग कर सकती है, लेकिन अगर एक बार अच्छी तरह से अनुभव कर लिया तो अनुभवी को कोई हिला ही नहीं सकता। इसलिए कोई भी बात सुनो मुरली के अंदर, क्लासेस के अंदर, मैं उसकी गहराई में जाऊं, उसका अनुभव करूं। कभी एकांत में बैठ जाओ ऐसे। बाबा कहता अव्यक्त वतन फरिश्तों की दुनिया है। अब बाबा फरिश्तों की दुनिया से इतनी बड़ी सेवाएं कर रहा है, सब दादियों को बुलाता है, एडवांस पार्टी को इमर्ज करता है, उनसे सेवाएं कराता है, हम लोगों को दिव्य दृष्टि तो मिली नहीं जो हम जाके देख के आ जाए, कोई कोई तो मिली होगी, लेकिन क्या हम दिव्य बुद्धि के द्वारा उस दृश्य को कभी इमर्ज करते हैं? कैसा व्यक्त तन होगा, कैसा लाइट का घर है, कैसे ब्रह्मा बाबा लाइट के शरीर में है, कैसे उनके द्वारा शिव बाबा आते हैं, प्रवेश होते हैं। चिंतन तो करो, चिंतन करते करते उसकी अनुभूतियां होने लगेंगी। कभी अव्यक्त वतन का अनुभव करो, कभी मूल वतन का अनुभव करो, कभी साकारी वतन में इतना ऊंचा भाग्य भगवान ने दिया, कभी चैतन्य मूर्ति बनकर के किसी मंदिर में खड़े होके देखो कितने भक्त आ रहे हैं, कितना चढ़ावा चढ़ रहा है, क्या मांगते हैं, क्या उनकी मनोकामनाएं हैं। कभी कल्प वृक्ष के पास, बीज में जड़ के पास बैठ जाओ, पूरे वृक्ष को शक्ति दो, सकाश दो, लाइट दो, जाती है या नहीं जाती चेक करो। योग हमारा यथार्थ है या नहीं है प्रयोग करके देखो, अपने शरीर पर, बीमारियों पर, संस्कारों पर, नहीं कहीं कर रहे हो तो पेड़ पौधों पर भी करके देख लो। मैं तो कईयों को कहता हूं तो पौधे लगा करके एक को अच्छा प्यार करो, स्नेह दो, पानी दो, दूसरे को भी पानी दो, लेकिन सिर्फ उसको प्यार नहीं दो, आप देखेंगे थोड़े दिन में अंतर का पता चल जाएगा, किया है ना। तो हमारे वाइब्रेशंस, यही योग है, वृत्तियों से वातावरण बनता है, हमारे शुभ भावनाएं, शुभ विचार। योग क्या है? केवल बाबा बाबा कहना योग नहीं है, लेकिन बाबा की शक्तियों का अनुभव करना और उन शक्तियों का प्रयोग करना। तो जहां पर भी आपको लगता है तो अपने योग की शक्तियों को परख लो। इसलिए अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा कई बार कहता है अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते, और जो ऐसे ही सुन लेते हैं आ जाते हैं ज्ञान में, वो चलते चलते कहीं ना कहीं धोखा खा लेते, नुकसान हो जाता, कोई की सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। अतीन्द्रिय सुख क्या है? अतीन्द्रिय सुख जो गोप गोपियों का गाया हुआ है, शब्द में ही सब रहस्य भरे हुए हैं। अति इंद्रिय, ये इंद्रियों से जो परे का सुख है, इंद्रिय सुख अलग है लेकिन उससे ऊपर सुख है, वो आत्मिक सुख है। जो आत्माएं अपनी आत्माभिमानी स्थिति में रहती हैं, वो आत्मिक सुख का अनुभव करती है, इसलिए उसको अति इंद्रिय सुख कहते हैं। परमानंद का अनुभव, योगियों का परमानंद, गोप गोपियों का अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। बाबा ने हमें योगी बनाया तो क्या मैंने उस परमानंद का अनुभव किया जिसके अंदर कोई दुख सुख का लेप छेप ही नहीं रहे? बहुत ऊंची स्टेज है परमानंद की अनुभूति। जो कुछ बाबा की मुरलियों में हम सब सुन रहे हैं उसको सिर्फ सुनने और लिखने तक सीमित न रखें। अगर हमें अपनी स्थिति अचल अडोल एक रस बनानी है तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे अनुभव का फाउंडेशन मजबूत करना, अनुभवी बनो, कोई भी बात अनुभव करो। और अनुभव करने के लिए एक अच्छी सी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जगदीश भाई ने किताब में लिखी है। कहते हैं दो चीटियों में एक बार डिबेट हो गई, चीटियों में डिबेट हो गई। दो पहाड़ थे, एक चीनी का पहाड़ था एक नमक का पहाड़ था। तो जो चीनी के पहाड़ पर रहती थी उस नमक वाले से बोलती है, अरे चीनी तो बहुत मीठी होती है। नमक वाली कहती कहाँ मीठी होती है, जैसा नमक वैसी चीनी। तो बोलती चल तेरे को मैं निमंत्रण देती हूँ, मैं चखाऊंगी चीनी कैसे मीठी होती है। तो जो नमक के पहाड़ पर रहने वाली चीटी थी उसको ले गई अपने साथ, सारा दिन उसको घुमाया इधर उधर। लास्ट में कहता कैसी चीनी लगी? कहती है छोड़ो ना, जैसा नमक वैसी चीनी। तो उसको ये आया आश्चर्य कि चीनी के पहाड़ पर भी इसको इसका अनुभव क्यों नहीं हुआ। तो कहा तुम अपना मुंह खोल, तो उसके मुंह में नमक का ढेला रखा हुआ था। अब जिसके मुंह में नमक का ढेला है उसको क्या चीनी की मिठास का पता चलेगा? कहने का भाव समझ गए ना? अगर कोई हम नेगेटिविटी उठा के ही आए हैं, कोई ऐसी बातें सुन लिया, सुना दिया किसी ने, और हमने अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाया हुआ है, भले मधुबन है, ये है, फलाना है, वहां ऐसे होता, वैसे होता, कई बातें सुनते रहते हैं ना, अंदर भर लिया सब नेगेटिव चिंतन। अब ऐसे सुंदर वातावरण में जहां 1-2% कुछ हुआ होगा उसका भी अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर से वो जो नमक रखा है ना अंदर, वो खत्म ही नहीं हुआ है, पहले उसको निकालना पड़ेगा। अच्छे वातावरण का अनुभव करने के लिए जो भगवान ने इस स्थान पर शक्तियां भरी हैं, उसका अनुभव करने के लिए हम सबको भी अपने व्यर्थ नेगेटिव विचारों को शांत करना पड़ेगा। जब उनको छोड़ दोगे ना, तब यहाँ की पवित्रता का, यहाँ की शांति का, यहाँ की शक्तियों का, यहाँ पवित्र वाइब्रेशंस का आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा। कोई कहे या न कहे, कुछ बात बताई जाए या न बताई जाए। एक बार यहाँ पर कुछ संतों का ग्रुप आया, 10-12 संत आए, सन्यासी लोग, सुना तो बहुत कुछ उल्टा सीधा था, लेकिन वो आ गए और हमारे भाई ने, बहने नहीं थी, भाई ले गया उनको शांति स्तंभ पर, घुमाया, बहुत सारी बातें सुनाई। सुनाने के बाद, सब दिखाने के बाद, वो अंदर जाके कहते हैं भाई ये जो स्थान है ना शांति स्तंभ से कुटिया तक का, यहाँ पर पता नहीं क्या है, बहुत शक्ति है, बहुत कुछ है, एक बहुत करंट जैसा है। पूछने लगा यहाँ क्या था, क्या था यहाँ, माना उनको कैच हो गया, पवित्र आत्माएं तो होती हैं, भले कुछ सुना था लेकिन यहाँ आने के बाद उनको लगा नहीं यहाँ कोई तपस्वी आत्माएं रह के गई हैं, उनकी शांति के प्रकंपन, उनकी पवित्रता के प्रकंपन, उनकी शुभ भावनाओं के प्रकंपन इस स्थान पर ऐसे हैं जैसे कोई ने रेखा खींची हुई है। और बाबा क्या करते थे, सवेरे सवेरे 4 बजे उठ करके बच्चे योग में जाते तो बाबा अपना सुबह सुबह शांति से कमरे से निकलते और शांति स्तंभ तक पैदल करते। चक्कर लगाते हैं। तो वो स्थान अपने आप में चार्ज हुआ। एक दिन यहाँ जो थल्ले है ना इधर ऑफिस के आगे, हम दो चार भाई ऐसे बैठे तो रोज बैठ जाते थे, तो चक्कर लगाती थी दादी जी। एक दिन खड़ी हो गई, कहती है ए लड़को तुम यहीं क्यों बैठते हो? मैंने कहा दादी अच्छा लगता है। बोले क्यों अच्छा लगता है पता है? हमको नहीं मालूम है। कहती यहाँ एक पहाड़ी थी, ऊंची सी पहाड़ी थी, और रोज बाबा यहाँ पहाड़ी पर आके खड़े होते थे। जब वो बाबा खड़े हो जाते थे तो हम सब बहनें आकर के बाबा को घेर लेती थी, और बाबा बहुत देर तक खड़े खड़े लाइट हाउस की तरह ऐसे लाइट देते थे, शक्ति देते थे। तो यहाँ पर बाबा के वो पवित्र वाइब्रेशन है, इसलिए तुम लोग रोज यहाँ के बैठते हो। तो ये स्थान बाबा की तपस्या का स्थान है, और यहाँ पर भी आकर के अगर हमको कुछ अनुभव न हो तो क्या कहेंगे? कुछ लोग शायद अंदर रखा हुआ होगा। इसलिए आप सब यहाँ के पवित्र वाइब्रेशंस का अच्छा अनुभव करके जाना। क्लासेस तो सुनो, क्लासेस तो सुनते रहते हो, लेकिन क्लास अलग चीज है, पॉइंट्स मिलेंगी, लेकिन एक आत्मा एकदम तृप्त हो जाए, भरपूर हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए जो कोई भी तूफान आए, कैसी भी बातें आए, अति में जाएगा ना सब कुछ, तब तो अंत होगा। जिस तरह से अभी दुनिया का माहौल अच्छा चल रहा है, इसे सदा थोड़ी चलने वाला है, कुछ भी होगा, कैसी भी बातें आएंगी अंदर हिलानेंगी, हिलाने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी स्थिति ऐसी बनाई है, संगम के समय को, संकल्प को, शक्तियों को सफल किया है, तो बाबा अंत समय में बहुत सहयोग देगा, मदद करेगा। केवल बाबा की शक्तियां जिसके पास हैं, वही अंत समय में अपनी स्थिति को एक रस अच्छा लडोर रख सकते। अगर किसी भी देहधारी ने, किसी भी व्यक्ति विशेष ने, किसी भी बात ने हमें अपनी तरफ आकर्षण किया, कोई भी रस, इंद्रिय रस अगर आत्मा को अपनी ओर खींच गए, तो अंतिम समय में एक रस स्थिति नहीं रह सकती। इसलिए इंद्रिय रसों को भी हमें त्यागना है। इंद्रिय रस हैं देखने के, सुनने के, बोलने के, खाने के, पीने के, बहुत सारे रस, इंद्रिय आकर्षण हो जाती, फटाफट वो रस पाया है उसने, खींच जाती है। अभी रस अंदर खींच रहा है तो एक रस कब बनोगे? इसलिए एक रस स्थिति तभी बनती है। एक रस ऐसा नहीं खड़े हो जाना, एक रस स्थिति और उड़ती कला की ओर ले जाती है, विकास की ओर ले जाती है, लेकिन वो एक रस स्थिति जो एक के रस, एक बाबा के प्यार में समा जाए। कुछ भी वो दुनिया में, बाबा मेरा साथी है, वो सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, इस निश्चय के, इस अनुभव के फाउंडेशन को मजबूत करो। बाकी अपने परिवार में जो हलचलें होती हैं उसका एक कारण बताता हूँ, बहुत सूक्ष्म कारण है। कई बार चलते चलते हम एक दूसरे को ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उसके दिल को ठेस। इस ब्राह्मण परिवार में जो पवित्र आत्माएं हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे कुमारियां हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, जिन्होंने पवित्रता का व्रत लिया है, उनके दिल को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बात को गहराई से समझना, किसी आत्मा को अगर हमने दुखी कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, और उसके अंदर से हमारे प्रति दुआओं की बजाय बद्दुआ निकली, तो वो बद्दुआ हमारे आप स्थिति को एक रस रखने नहीं देगी। बहुत अटेंशन देना है हमारे लौकिक अलौकिक परिवार में, हमारे बड़े, हमारे निमित्त, हमारे बाप दादा, किसी भी तरह से उनकी अवज्ञाएं करके हम बद्दुआएं न कमाएं। बद्दुआएं हमारी स्थिति को हलचल में लाती हैं, एक रस नहीं रह देती। इसलिए जितना हो सके इस समय दुआओं का स्टॉक जमा करो। जिसने दुआएं जमा की हैं, उनके सामने कैसा भी पेपर आएगा, बहुत सहज पार हो जाएगा। दादियों ने ऐसा पार किया है, कितने अनुभव मैं दादी के सुनाऊं, अरे सबकी दुआएं हैं दादी, दर्द है कहीं, तकलीफ हो रही है कोई? नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं, मुझे बाबा की, आप बड़ों की, सबकी दुआएं हैं, दुआएं हैं। इतना प्यार से कहती थी जैसे ना दादी ने दुआओं का स्टॉक जमा किया हुआ है, और उसके कारण उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति को डगमग नहीं किया। शारीरिक पेपर आए, कोई भी यज्ञ में पेपर आए, नहीं, बाबा की दुआएं, बाबा की आशीर्वाद का हाथ है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हम सभी बाबा की, परिवार की, बड़ों की, निमित्त की दुआएं लें, और दुआओं का स्टॉक जमा करके बहुत सच्चा लडोल एक रस स्थिति बनाए, ठीक है, कि ओम शांति।